सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 12वां अध्याय के 35वें 35 श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। चातुर्होत्रम कर्मा तंत्रम उपवेदा नयः सह धर्मस्य पादाश चत्वारस तथैव आश्रम वृत्तयः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली चार प्रकार की सात सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के चार सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य, खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये चार शारीरिक मांगें पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब चारों वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह है वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभ्य पुरुष इनका पालन कर सकें। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है ना। और सो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो इससे पिछले अध्याय में उन्होंने काल का वर्णन किया था कि अलग अलग ग्रह पे अलग अलग तरह से काल चल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने शुरू की तो अच्छी चीज़ें भी बनाई और बुरी चीज़ें भी बनाई उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, है ना। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हालांकि छाया अच्छी नहीं मानी जाती है ना, तो इसलिए प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि भौतिक जगत में तमोगुण रजोगुण के बीच में सत्वगुण भी पाया जा सकता है, है ना। और प्रभुपाद ने अनेक स्थानों पर एक्सप्लेन किया है कि पूरे इस भौतिक संसार में कहीं भी शुद्ध सत्व, शुद्ध रजोगुण या शुद्ध तमोगुण उपलब्ध नहीं होता, है ना। हमेशा मिक्सचर रहता है। देखने वाली बात यह होती है कि प्रधानता किस गुण की हो रही है ना। तो जो व्यक्ति में जिसमें सत्वगुण प्रधान है, ऐसा नहीं कि उसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं है, वो भी है, लेकिन अगर सत्वगुण की प्रधानता है तो उसको बोलेंगे सत्वगुणी है। अगर रजोगुण की प्रधानता है तो उसमें उसको बोलेंगे वो रजोगुणी है। अगर तमोगुण की प्रधानता है तो तमोगुणी कहा जाता है, हालांकि उसमें रजोगुण और सत्वगुण भी कुछ मात्रा में रहेगा, लेकिन प्रधानता अगर तमोगुण की है तो तमोगुणी कहलाएगा वो, है ना। फिर मैत्रेय जी ने बता रहे थे सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई। तो उन्होंने एक ब्रह्मा जी के दोष के बारे में चर्चा की। हाँ, उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी की एक पुत्री प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी ब्रह्मा जी से, उसका नाम था वाक, है ना। और ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री का भोग करने का विचार आ गया, है ना। तो शीला प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं इस विषय में। पहली बात यह है कि ये कहा जाता है कि ये जो घटना हुई थी ये हमारे वाले इस कल्प के ब्रह्मा जी के लिए नहीं थी, वो पहले के किसी ब्रह्मा जी के लिए थी, क्योंकि जो हमारे ये ब्रह्मा है इनको भगवान ने भागवतम का संदेश सुनाया था, है ना। इसको चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं, है ना। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया था उनको, भगवान ने कहा था कि आप इस जन्म में, जो आपका ये जन्म है, आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे आप, है ना। आपकी जितनी भी आयु रहेगी आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। तो इससे हमारे आचार्यों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो पहले के किसी कल्प के ब्रह्मा होंगे जिनके साथ ऐसा घटित हुआ। तो मारीचि इत्यादि उनके जो पुत्र थे उन्होंने उनको जाके बोला कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने, है ना। तो ब्रह्मा जी नहीं माने तो मारीचि आदि ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी से लड़ाई शुरू नहीं करती, है ना। आप देखेंगे कि उन्होंने अगले श्लोक में जो मारीचि इत्यादि ऋषि थे उन्होंने एकदम से भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्णा आप प्लीज हेल्प करो, है ना। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद बात है, है ना। अगर हम किसी भक्त में अगर कुछ कमी देखें, हाँ, तो हमने उसको बोला अगर कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और वो नहीं मानेगा, 99% नहीं मानेगा क्योंकि अगर मानना ही होता तो करता क्यों। सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दिमाग घूम जाता है तो बंदा फिर कैसे भी काम करता है, उसको कितना समझा लो वो करके ही मानेगा उसको। तो उस समय जो बेस्ट पॉलिसी है वो ये है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करके भगवान से प्रे करना चाहिए कि हे कृष्णा, हे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कौन होता है, आप प्लीज़ इस भक्त की हेल्प कीजिए, हाँ ये बहुत अच्छे भक्त हैं, कुछ समय के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से, गुण कर्मा, हाँ गुण और कर्मों के गुणा गुणेशु वर्तन्ते, हाँ कि सब लोग गुणों के अंदर ही घूम रहे हैं, हाँ अहंकार विमोड़ आत्मा, वो कई बार दिमाग में आ जाता है, कुछ रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता हो जाए तो भक्त सब कुछ जानते हुए भी विवश हो जाता है, विवश हो जाता है। कुछ जो आदर्श है उससे थोड़ा नीचे काम करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि या तो भक्त है या भक्त नहीं है, भक्त है और भक्त नहीं है के बीच में 1 करोड़ परिस्थितियां हैं, 1 करोड़ कॉम्बिनेशन है। हाँ तो जब हम बोलते हैं किसी भक्त का फॉल डाउन हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसने माला ही फेंक देगा करने तो ही उसका फॉल डाउन है। अगर एक भक्त यहाँ पर है, इधर आ गया, हल्का सा नीचे आ गया, वो भी फॉल डाउन है ना। जरा सी भी उत्साह में कमी हुई तो फॉल डाउन है, है ना। इसीलिए प्रभुपाद और हमारे आचार्य कहते हैं बहुत सावधानी से व्यवहार करो, है ना, हमेशा सावधान रहो और हमेशा डर कर रहो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम भगवान कृष्ण की शरण में आ गए हैं, गौर निताई की शरण में आ गए हैं, अभी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। माया हमारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ सकती है क्योंकि हमने अभी पूरी तरह से भगवान की शरण नहीं ली है, है ना। सो हमेशा भक्त को डर के रहना चाहिए, हाँ कि कहीं मेरा पतन नहीं हो जाए, हाँ मैं पहले से ही माया के प्रभाव में हूँ और ज़्यादा माया के प्रभाव में नहीं घुस जाऊँ, है ना। सो हमेशा सावधान रहना चाहिए और डर के रहना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब भक्तों में डर खत्म हो जाता है। सो जब मारीचि इत्यादि ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी का हृदय बदला, है ना। तो भक्त जो है अगर भगवान से प्रे करेंगे, विशेषकर दूसरे भक्तों के लिए, तो भगवान बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर आप अपने लिए प्रे करो तो एक बार भगवान बोलेंगे पूरा संसार कर रहा है अपने लिए, इसने भी कर ली, कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए प्रे करेंगे तो भगवान बहुत ध्यान से सुनते हैं उसको, है ना। लेकिन आप लोग ये प्रश्न कह सकते हो कि हमारे कितने वैष्णव आचार्य हैं, वो बोल रहे हैं मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मौसम पतित प्रभु न पाए प्यार। तो हमारे वैष्णव आचार्य तो अपने कल्याण के बारे में बोल रहे हैं, आप कह रहे हो कि अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, दूसरे भक्त के बारे में बोलना चाहिए। तो वैष्णव आचार्य इसलिए बोल रहे हैं मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार, मेरा कल्याण करो। मेरा कल्याण, वो क्यों अपने कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको भगवान की महानता के बारे में पता चल चुका है पूरी तरह से। वो ये सोच रहे हैं कि भगवान की पर्याप्त सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए, बहुत कम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए जब भक्ति में कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेवा करने में उसकी रुचि बढ़ती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है यार कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, हाँ, और हम देखो हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ा प्रभु इसको तो साइड में ले जाओ, मतलब अब इतने गंभीर विषय में बात कर रहे हैं आप, बच्चे खिला रहे हो। ओके, सो सो जो वैष्णव आचार्य हैं हमारे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा भगवान की सेवा करें, भगवान उनको और ज़्यादा शक्ति दें ताकि वो और अधिक भगवान की सेवा कर पाए। पहले से ही बहुत कर रहे हैं, अगर हम अपने से तुलना करें वो कुछ मुकाबला ही नहीं है, वो मतलब सूर्य के समान है, हम बुझे हुए दीपक के से भी गिरे गए गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे कि कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। सो ये दीनता की भी निशानी है और ये सच्चाई भी है। सो इसीलिए वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि आप प्लीज हम पे कृपा करो, प्लीज आप हमें हमारा उद्धार करो। क्यों करो? ताकि और भी अधिक वो भगवान की सेवा कर पाए, है ना। जब एक कनिष्ठ भक्त बोलता है, एक नया भक्त बोलता है हे कृष्ण कृपा करो, तो वो कृपा के पीछे भोग की भावना होती है। लेकिन जब शुद्ध भक्त, जब आचार्य जब ये बोलते हैं कि मुझ पे कृपा करो, तो उसके पीछे और भी ज़्यादा सेवा करने की ताकत मिले, ये भावना होती है, है ना। सो भगवान ने उनका हृदय बदल दिया और भगवान सक्षम है हृदय बदलने में, क्योंकि भगवान वहाँ पर बैठे ही हुए है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः ज्ञानम स्मृति अपोहनम चा। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं कि अकेले ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे हुए हैं, अकेले ब्रह्मा जी का हृदय बदल दिया उन्होंने, है ना। भगवान सबके सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और भगवान हृदय बदलना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी डिजायर नहीं है, तो भगवान ये वेट कर रहे हैं, हाँ, और देखो भगवान का धैर्य कि भगवान हमारे करोड़ों जन्मों से वेट कर रहे हैं कि कभी इसके मन में डिजायर आएगी और कभी मैं इसका हृदय बदल दूंगा और इसको शुद्ध भक्त बनाऊंगा। कितने हम लोग 5 मिनट वेट नहीं कर पाते, है ना? किसी को कुछ काम बोला, वो लेट हो गया, नहीं कर पाया। कोई सेवा में अगर किसी को बोला कि प्रभु प्लीज क्या आप ये काम कर लोगे, नहीं मैं बिजी हूं, तो इसी में नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगवान का धैर्य देखो, करोड़ों जन्मों से वेट ही किए जा रहे हैं, नहीं? कितना अद्भुत है। मतलब इसको समझ पाना बहुत ही कठिन है, इसको समझ पाना कि कितनी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमें भी जब हम दूसरे भक्तों के साथ जब हम मेल जोल रखते हैं, दूसरे भक्तों के साथ में हम जब व्यवहार करते हैं, और अगर हमें ये सेवा मिली है कि हम दूसरे लोगों को सेवा में लगाएं, तो बहुत ही धैर्य रखना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा तूने कहना नहीं माना, बच्चों तेरे को देखता हूँ। उसको अगर एक कहना नहीं माना, 100 बार मान लिया, एक नहीं माना, तो उसका नाम ही काट देते हैं। चल बेटा अब जब तक तू गिड़गिड़ाएगा नहीं तब तक देखो। नहीं, सो भगवान की ऐसी सोच नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याः, थोड़ा सा भी किया बहुत है। हम लोग को भी जो स्पेशली जिनके पास सेवा देने की सेवा है, उनको भी ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ये बात, हाँ, कि वो व्यक्ति कुछ और भी कर सकता था लेकिन फिर भी उसने टाइम निकाला और सेवा करने का सोचा सही। नहीं कर पाया एक दो बारी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो हमेशा उदार हृदय से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने एक बार कहना नहीं माना या एक बार सेवा नहीं की तो उसको साइड पे कर दो, बिल्कुल उससे संबंध खत्म कर दो, हाँ, उसको बिल्कुल जमीन पे लगा दो। वो अगर माला कर रहा है तो कर क्यों रहा है, हाँ? उसको माला करने के लिए मैंने तो उत्साहित किया था, हाँ? अब वो मेरे बात नहीं मान रहा तो उसकी माला भी छूट जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हाँ? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैत्रेय जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ये बना, ब्रह्मा जी ने वो बनाया, ब्रह्मा जी ने ये बनाया, वो सब जो भी चीज ब्रह्मा जी बना रहे हैं, बना चुके हैं या आगे बनाएंगे, वो ब्रह्मा जी सिर्फ निमित्त हैं। ब्रह्मा जी के पास स्वयं में कुछ शक्ति नहीं है करने के लिए, हाँ? अगर स्वयं में शक्ति होती पैदा होते शुरू कर देते, नहीं कर पाए ना, फिर उन्होंने तप किया, हाँ, तप किया तो भगवान ने शक्ति दी। तो ब्रह्मा जी निमित्त हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम ये मत सोचो करता हम, ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ निमित्त हो, निमित्त मात्र भव्य सव्य साच्य, तुम निमित्त मात्र हो, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट मत समझ लेना, है ना? सो ब्रह्मा जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक निमित्त है। और जो भी ब्रह्मा जी बना रहे हैं, आप देखो भगवद गीता 9:16 में भगवान कह भी रहे हैं, हाँ, अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वधा हम अहम औषधम मंत्रो हम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, मैं ही कर्म कांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण मैं हूँ, औषधि दिव्य ध्वनि घी अग्नि आहुति सब मैं ही हूँ, हाँ? भगवान से अलग कुछ नहीं है, हाँ? तो भगवान से अलग कुछ नहीं है ये समझना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको ऐसा नहीं है कि एक जन्म में या एक महीने में या कुछ टाइम में समझ लिया, बहुत टाइम लगता है ये समझने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं, हाँ, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानवान बहुत जन्म एफर्ट किया, बहुत जन्म प्रयास किया, ज्ञान मिल गया, हाँ, तो वो ज्ञान मिलने पर क्या होगा, माम प्रपद्यन्ते, माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उनको ज्ञान मिल चुका है। क्या ज्ञान मिल चुका है? वासुदेवम सर्वम इति, जो भगवान कृष्ण है वासुदेव है वही सब कुछ है। हाँ, यज्ञ भी वही है, घी भी वही है, आहुति भी वही है, अग्नि भी वही है, यज्ञ करने वाले भी वही है, यज्ञ कराने वाले भी वही है, यज्ञ के मंत्र भी वही है। तो जब हर चीज वही है, हाँ, जब हर चीज वही है, तो फिर हम भगवान से अलग किस प्रकार रह सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता भगवान से अलग रहने के लिए, नहीं? और ये 9-16 में प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए, सारे यज्ञ संपन्न कर लिए अगर हरे कृष्णा जप कर लिया, हाँ, सारे तालाब बना दिए, सारे अस्पताल बना दिए, सारे स्कूल बनवा दिए, सब अश्वमेध, हाँ, गोमेध, सारे यज्ञ कर लिए, हाँ, अगर हरे कृष्णा मंत्र का जप कर लिया, अगर कृष्ण भक्ति कर ली, क्योंकि ये जितनी भी वस्तुएं ये सारी कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, कोई भी वस्तु कृष्ण से भिन्न नहीं है। इसीलिए और अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हाँ, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेदा, कि मैं ही माता पिता दादा, हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ, सारे वेद मैं ही हूँ, है ना? जैसे अभी हमने श्लोक बोला था, सर्वस्य चाहमृदि सन्निष्ठो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पूर्णम चा, हाँ, सर्वेश वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेदवित एव चा, वेद्या सर्वे, सारे वेदों से सारे वेद पढ़ के क्या जानने की जरूरत है, क्या जानने योग्य है? वेद्य का मतलब जानने योग्य क्या है? कृष्णा। हाँ, सो अगर हम बहुत ज्यादा प्रयास करें तो भी अगर हम ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो हम पता चलेगा कि कृष्ण से अभिन्न कुछ है ही नहीं, है ना? जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण कर रहे हैं, हम लोग निमित्त मात्र हैं। इसलिए हम अगर कभी अच्छे से प्रचार कर पाए या अच्छे से कोई बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, हाँ, हजारों भक्त बना दिए, तो इसमें कभी भी मन में कभी गर्व नहीं आना चाहिए, हाँ, कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने कर दिया। जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, चाहे कोई भक्ति में जुड़ा है चाहे कोई भक्ति में नहीं जुड़ा, वो सब भगवान की इच्छा से, भगवान की सम्मति से सारे काम हो रहे हैं, है ना? अगर हम लोग कुछ प्रचार कर पा रहे हैं तो वो प्रचार हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें भगवान से शक्ति मिली है। इसीलिए कभी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जंग के समान है, जैसे लोहा चुंबक की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, नहीं? लोहे को चुंबक के पास ले जाओ, शक करके एकदम से चिपक जाएगा, लेकिन अगर जंग लगी होगी लोहे पर तो फिर कुछ फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको छूते भी रहेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं कि प्रभुपाद, हाँ, कितने प्रभुपाद के शिष्य थे, लोग थे, प्रभुपाद उनकी तारीफ करते थे, उनके सिर पर हाथ फेरते थे, फिर भी वो छोड़ के चले गए नहीं, और जिनको प्रभुपाद डांटते थे वो आज भी इस कौन में लगे हुए हैं, आज भी। ये क्या आवाज आ रही है? सो आज भी इस कौन में सेवा में लगे हुए हैं, है ना? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डेटी वर्शिप में भी लगे हो, हाँ, लेकिन अगर मन में अगर गर्व है, अगर मन में दीनता नहीं है, कुछ फायदा नहीं है करने के लिए, है ना? वो दिखावा है, हाँ। कैप्सूल तो खा रहे हैं, अंदर दवाई नहीं है। खाली कैप्सूल खाने से थोड़े ना ठीक होगा। तो जो भव रोग है, अगर हमारे अंदर गर्व है, अभिमान है, अगर भगवान की कृपा को हम हर क्षण नहीं देख पा रहे हैं, तो कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी उपलब्धि ले आए, हाँ, कुछ फायदा नहीं है, बेकार है सब, है। क्योंकि असर तभी होगा, शुद्धि तभी होगी जब हमारा हृदय, हृदय में जब दीनता होगी। अगर हृदय में दीनता नहीं है तो मृतक के समान है। और मृतक शरीर को कितने से सजा लो, प्रभुपाद ने एक लेख लिखा है, हाँ। सो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक अगर कोई मृतक शरीर है, उसको कितनी आभूषण डाल दो फिर भी वो डरावना ही लगता है, क्योंकि आत्मा ही नहीं है बीच में। इसी प्रकार अगर कोई भक्त है, उसमें 1 करोड़ गुण है और सिर्फ दीनता नहीं है, तो बेकार है, है ना? तो दीनता तब आएगी जब हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग निमित्त हैं और भगवान हमें यूज कर रहे हैं, गुरु हमें यूज कर रहे हैं सेवा के लिए, है ना? सो ब्रह्मा जी ने जब वाक नामक पुत्री को जन्म दिया, तो उनसे उसका संग करने की इच्छा आ गई उनमें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी भी चाहे आपकी कोई आपकी माँ या आपकी पुत्री क्यों ना हो, उसके साथ भी अकेले जो है एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद ने अपने आचरण से भी दिखाया। एक बार प्रभुपाद की सिस्टर उनसे मिलने आई, तो प्रभुपाद के एक शिष्य उनके पास खड़े थे, उन्होंने बोला कुछ इन्होंने पर्सनल बात करनी होगी। तो वहाँ से जाने लगे तो प्रभुपाद ने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, यहीं खड़े रहो। तो प्रभुपाद दिखा रहे थे कि हालांकि प्रभुपाद नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद अपने आचरण से दिखा रहे थे हमेशा डर के रहना चाहिए, है ना? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि एक पुतले के साथ भी, स्त्री का पुतला भी है, वो भी दिमाग खराब कर देता है। स्त्री की तो बात ही छोड़ दो, अगर पुतला भी है, पुतले के भी ज्यादा पास मत जाओ, दिमाग में भोग का विचार आ जाएगा, है ना? और आजकल तो ऐसे ऐसे पुतले बनते हैं कि पता ही नहीं चलता दूसरे। और नकली बाल वाल लगा देते हैं, पूरा उसको अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, तो थोड़ा पास जाके देखो तो लगता है अरे यहाँ यार पलक नहीं झपक रही इसकी, पुतला है ये। सो वल्लभाचार्य यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भोग का विचार आया उनके मन में अपनी पुत्री को, तो उन्होंने बोला कि जो वाक नामक पुत्री है, ये वास्तव में वैदिक ज्ञान है, हाँ, ये वैदिक श्लोक है। तो ब्रह्मा जी उस वैदिक ज्ञान को, उस वैदिक श्लोक को भोगना चाहते थे, हाँ, वो ज्ञान का इस्तेमाल अपनी संतुष्टि के लिए करना चाह रहे थे, हाँ। सो उन्होंने एक और नया दृष्टिकोण सामने रखा वल्लभाचार्य ने। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम कुछ भी नॉलेज अगर लेते हैं, अगर हम पढ़ते हैं भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, तो हमें ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सेवा करने के लिए पढ़ना चाहिए कि इस ज्ञान को मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं और इससे दूसरों को कैसे हेल्प करूं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि इसलिए हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहिए कि लोग बोलेंगे उसको बहुत नॉलेज है यार, हाँ वो बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी है वो। ये पदवी लेने के लिए स्टडी नहीं करना चाहिए, हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा विनम्र बने, हाँ विद्या विनय संपन्न, हाँ ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। विद्या अगर मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान अगर सही तरीके से हम ले रहे हैं तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है, विनय आ जाएगा, सबसे पहला लक्षण। हाँ अगर ज्ञान मिलने से अगर गर्व आ रहा है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है, कुछ और आ रहा है ना। अगर ज्ञान मिल रहा है और उससे विनम्रता नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। तो ज्ञान हमें लेना चाहिए, पुस्तकों को प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ये ध्यान में रख के कि हमने इसको सेवा में लगाना है और अपना जीवन बदलना है। हाँ किसी पर रोब जमाने के लिए ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, है ना। सो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भगवद गीता में प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो ये जितने भी जिनको भी हम अपने माता पिता इत्यादि जो भी समझ रहे हैं ये सब भौतिक प्रकृति से ही बने हुए हैं सारे, है ना, स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्वों से बने हुए हैं और वो सारे भगवान की भिन्ना प्रकृति है, और जो आत्मा है वो भगवान की वो भी भिन्न ही है लेकिन श्रेष्ठ है। जो आठ तत्व है वो निकृष्ट है और आत्मा श्रेष्ठ है भिन्न वो भी। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा भी भगवान के अंश है और जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है वो भी भगवान के अंश है। इसका मतलब जो हमारे माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन बंधु बांधव फ्रेंड्स वो सारे कौन है, वो सारे कृष्ण है, सारे कृष्ण है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है, कुछ और नहीं है, है ना। इसलिए हमें अपना समय हमें उनकी अलग से कुछ सेवा करके बिताने की आवश्यकता नहीं है। हमें हम अपने माता पिता परिवार की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण की संपत्ति है, हम उनकी सेवा इसलिए नहीं करना चाहते कि वो हमारी संपत्ति है, हम अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है, तदीय वस्तु है। वो भगवान कृष्ण की वस्तु है और हमें उसकी देखरेख के लिए भगवान ने दी है। तो स्वामित्व की भावना नहीं आनी चाहिए, निर्मम निहमम ममता नहीं होनी चाहिए। हालांकि निर्मम शब्द जो है आधुनिक संसार में समाज में निर्मम शब्द प्रयोग हो रहा है, एक गलत क्वालिटी के रूप में अगर बोलते हैं ना वो निर्मम है, इसका मतलब उसमें दया नहीं है। लेकिन जो वैदिक अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो निर्मम जो शब्द है वो एक अच्छा गुण है कि ममता नहीं है, ममता नहीं है और दया नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। निर्मम का मतलब है ममता नहीं है, ममत्व का भाव नहीं है, मेरा है अहम ममेति, मेरा है ये भाव नहीं है। लेकिन मेरा नहीं है करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दया नहीं है, दया का भाव रखना चाहिए, ममत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। तो जब मैत्रेय जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये प्रकट किया वो बनाया ये बनाया, हाँ, सारे ऋषि बनाए, सारा पूरा संसार उन्होंने बना दिया, तो ये पूरा संसार वास्तव में, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी कार्य करने के दो कारक हैं, दो कारण हैं किसी भी वस्तु के बनने के पीछे, है ना। एक जो है जो सामने दिख रहा है, हाँ, जिसके द्वारा वो कार्य हुआ, और दूसरा जिसके जिसकी प्रेरणा से वो कार्य संपन्न हुआ, है ना। तो उसको प्रभुपाद बोलते हैं एफिशिएंट कॉज और इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब जैसे माता ने बच्चे को जन्म दिया, है ना, तो माता जो है वो इमीडिएट कॉज है। हाँ, वो दिख रहा है कि माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा किसकी संपत्ति माना जाता है, वो बच्चा पिता की संपत्ति माना जाता है ना, क्योंकि जो वीर्य है, जो जीव है, वो पिता ने माता को प्रदान किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो एफिशिएंट कॉज है। हाँ, इसी प्रकार ब्रह्मा जी या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, या जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए पियस भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप पियस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो बोल रहे हैं कि जो दुर्गा देवी है, हाँ, वो सृष्टि कर रही है, पालन कर रही है और संहार कर रही है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो लेकिन वो कैसे कर पा रही है, वो कर पा रही है छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वो कर रही है क्योंकि वो भगवान की छाया के रूप में कार्य कर रही है। उनको जो शक्ति मिल रही है, जो ताकत मिल रही है, वो कृष्ण से मिल रही है, गोविंद से मिल रही है, अपने आप में उनके पास कुछ ऐसा स्पेशल पावर नहीं है उनके पास में कि वो ये कार्य कर पाए, वो कार्य कर पा रही है। उनकी सिर्फ यही महानता अगर बोले तो यही मानता है कि भगवान ने चूज किया उनको कि हाँ ये काम करने के लिए इनको मैं चूज कर रहा हूँ, इनका चुनाव कर रहा हूँ, यही महानता है। ये भी बड़ी बात है ना। भगवान हर किसी को हर काम के लिए नहीं लगा देते, भगवान देखते हैं कि हाँ भी योग्यता भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई काम पकड़ा दिया और पूरा चौपट कर दिया उसने। भगवान सुपर एक्सपर्ट है। हाँ, इसलिए भगवान बहुत सोच समझकर देख भाल कर भगवान लोगों को सेवा में लगाते हैं। और अगर फिर भी हम सेवा मांगी और सेवा मिल गई और हमारे मन में अगर अहंकार आ जाए, तो सिर्फ समय की बात है जब हम उस सेवा से दूर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान से सेवा तो मांगनी चाहिए और सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम उस सेवा को और भी अच्छे ढंग से कर सकते थे। आपने बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए इसको और अच्छे से कर सकते थे, और इसको करने की शक्ति भगवान ने दी है, और अगर अच्छी तरह से काम हुआ, अच्छा परिणाम मिला, तो वो परिणाम भी भगवान ने दिया है, हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। हम तो कठपुतलियां हैं, भगवान ने डोरी खींच के हिला दिया तो सबने बोला देखो कितनी अच्छी कठपुतली नाच रही है, लेकिन वास्तव में उसका सारा श्रेय तो कठपुतली वाले को जाता है ना, पपेटियर, उसका कोई भी श्रेय कठपुतली को नहीं जाता है ना। तो अगर हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ना बने, लेकिन हम लोग विनीत भाव से हमेशा भक्ति में जुड़े जरूर रह पाएंगे, है ना। हम जितने विनीत रहेंगे अपराध कम होंगे। हाँ, अगर अपराध कम होंगे, गलतियाँ कम होंगी, तो हम आजीवन भगवान का भजन करते रह सकते हैं, है ना। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा।